दूसरा राजा अध्याय 16, अध्याय 16 पद 1। रमल्याह के पुत्र पेकाह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। योताम का पुत्र आहाज अब फिर यहां राज्य कर रहा है। उत्तरी राज्य में एक आहाज होता था, अब दक्षिणी राज्य में ये दूसरा आहाज है। अध्याय 16 पद 2 से लेकर 5 तक। जब आहाज राज्य करने लगा तब वो 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, परंतु वो यहूदा के बुरे राजाओं में से एक था और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वो इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया और ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वो बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तब आराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इसराइल के राजा पेकाह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। उसने अशूर का राजा तिगलत पिलेसर के पास पैसे भेजे और उससे सहायता मांगी और तिगलत पिलेसर आराम को आया। उसने दमिश्क को जीत लिया और आहाज उसके लिए भेंट लेकर गया। अशूर के राजा ने आराम और इसराइल पर चढ़ाई आरंभ की और उन्होंने फिर आहाज पर आक्रमण नहीं किया। अशूर के राजा ने दमिश्क को जीतने के बाद राजा आहाज को निमंत्रण दिया कि वो आकर दमिश्क को देखे, और जब वो वहां गया उसने एक वेदी देखी जिस पर उसका मन लग गया। उसने उसका नाप और नक्शा लिया और घर लौटकर उरिया याजक से कहा, मैं चाहता हूं कि तू इस तरह की वेदी बनाए। तब उसने दूसरी वेदी का निर्माण करवाया जैसे उसने दमिश्क में देखी थी। वो पहले वाली वेदी को मंदिर से बाहर ले गया और इस वेदी को जो मूर्ति पूजकों की वेदी के समान थी उसके स्थान पर रख दी। पीतल का बड़ा हौद जो 12 पीतल के बैलों के ऊपर मंदिर के समक्ष टिकी थी उसने निकालकर भूमि पर रख दिया और मंदिर को और परमेश्वर को अपवित्र कर दिया और यरूशलेम के मंदिर को मूर्ति पूजकों के समान बना दिया जैसे उसने दमिश्क में देखा था। उसकी मृत्यु अंत के कुछ पदों में लिखी है। जब हम अध्याय 17 के अध्ययन करेंगे तब हम इसराइल के पतन के कारणों को देखेंगे। परमेश्वर इसराइल की बंधुआई में जाने के कारणों को सूचीबद्ध करता है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में हम इसराइल देश के पतन की ओर चलेंगे। उनके अंत का कारण था कि उन्होंने परमेश्वर का अनुसरण नहीं किया और उसकी उपासना का त्याग किया। ज्ञान के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 14 के 34 पद में, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। तब हम जान जाते हैं कि इसराइल की पराजय का कारण क्या थे। जो शिक्षा हम सीखने जा रहे हैं कुछ कड़वी होगी, क्योंकि आज हम इसराइल से अलग दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के मार्गों को समझना नहीं चाहते। एक दिन हबकुक नबी ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर कृपया मुझे और ज्यादा कुछ न दिखा, क्योंकि देश तीव्रता से पतन की ओर जा रहा है, वो भ्रष्ट हो गया है, अगवे बहुत भ्रष्ट हो गए हैं और परमेश्वर तू इनके प्रति कुछ नहीं करता। परमेश्वर ने हबकुक से कहा, मैं इसके बारे में कुछ कर रहा हूं, परंतु यदि मैं तुझे बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं तो तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। हबकुक ने कहा, मुझे परख कर देख। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं यहूदा के विरुद्ध बाबुल को लाऊंगा और वो यहूदा को बंदी बनाएंगे। क्यों प्रभु तू ऐसा करेगा? परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा था तू विश्वास नहीं करेगा। परंतु उसने कहा, हम बुरे हैं, ये तो ठीक है, परंतु वे तो हमसे भी बुरे हैं। तो क्यों हमारे देश से भी भ्रष्ट देश को हमें दंड देने के लिए प्रयोग करता है? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वे नहीं जानते, वे मेरे लोग नहीं हैं, तुम मेरे लोग हो और मुझसे मुड़ गए हो, क्योंकि तुमने मुझे जाना है। ज्ञान जिम्मेदारी लाता है और ज्ञान के अनुसार काम करने की असफलता परमेश्वर का न्याय लाती है। जब परमेश्वर सदोम अमोरा का न्याय करने को था, आपको याद होगा, इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो मैं सारे स्थान को छोड़ूंगा। आज रात आप स्वयं को बहुत सम्मानित समझे, क्योंकि आपके ही कारण परमेश्वर हमारे दंड को रोके हुए हैं। नहीं तो अब तक क्या से क्या हो जाता? परमेश्वर सदोम अमोरा पर जब तक न्याय नहीं लाया, तब तक उसने उस धर्मी पुरुष लूत को वहां से हटा नहीं दिया। मैं विश्वास करता हूं वो अपनी सच्ची कलीसिया को हटा लेगा, परंतु उसका उचित न्याय अवश्य राष्ट्रों पर आएगा। इस विषय पर हम अगले अध्ययन में पढ़ेंगे, जब हम इसराइल के पतन के बारे में परमेश्वर के न्याय और न्याय के कारणों के बारे में देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको थामे रखे और आपको दृढ़ बनाए। जब आप संसारिक लोगों से मिलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक सुरक्षा दे, जो आपको हर बुराई के असर से जो आपके जीवन में आए, अर्थात जब आप नौकरी पर, स्कूल में या इस समाज में भ्रष्टाचार का सामना करते हैं, तब वो आपको बचा कर रखे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपकी सहायता करे कि आप अपना मन और हृदय उस पर लगा कर रखें। आप अपनी दृष्टि इस संसार के भ्रष्टाचार से ऊपर उठाए रखें, और जब हम प्रभु को, जो हमारी एकमात्र आशा है, देखें तो सामर्थ पाए। वही हमारा बल और हमारी सुरक्षा है।